ओम शांति। भाई सब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज आप हम सब से अपना अमूल्य समय निकाल के हमारे बीच में आए। ये मधुबन में जब भट्टियाँ शुरू हुई ज्ञान में, तो यहाँ पे एक अच्छा ये माहौल बना कि जो भी मधुबन के पुराने पुराने भाई हैं, यू नो, कई बार क्या होता है कि हम लोग टीवी पे देखते हैं जो ना, जैसे बहुत सीनियर लोग हैं उनको सुनते हैं, पर जब भट्टियों में ये हमें एक अच्छा मौका मिलता है कि जो बाबा के घर में गुप्त रतन होते हैं ना, जो पुरुषार्थी होते हैं, उनके अनुभव भी सुनने को मिलते हैं। तो ऐसे ही गुप्त रतन हमारे महेश भाई जी हैं। पूरा जिंदगी भर भाई साहब के साथ रहे, इतने खजाने हैं, यू नो, आज उन खजानों को हम भाई साहब से सुनेंगे। तो जैसा कि वैसे नया साल आज से शुरू हुआ है और अव्यक्त मास भी स्टार्ट हुआ, यू नो, हम जब से मैं मधुबन में आया हूँ, मैंने अव्यक्त मास का, चाहे दादी हो, यू नो, जो भी सीनियर हो, हमेशा विशेष इसको तपस्या मास बोलते हैं, यू नो। बाबा ने भी अव्यक्त मास में बोलते हैं अपनी संपूर्ण अवस्था को पाया। तो ये अव्यक्त मास, जनवरी मास का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि हम सभी मधुबन में हैं, विशेष खास तपस्या के लिए आए हैं। तो इस जनवरी मास और अव्यक्त मास के महत्व को हमें थोड़ा सा बताइए।
ओम शांति। सबसे पहले आपको मैं नया साल की मुबारक देता हूं, क्योंकि आप लोग बहुत 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 बड़े भाग्यशाली है। क्यों? नया साल में आप लोग बाबा के घर में बैठे हुए हैं, तो इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई है। बाकी जनवरी मास को अव्यक्त मास भी कहा जाता है और तपस्या मास भी कहा जाता है, क्योंकि साकार बाबा 1969 18 जनवरी के दिन अव्यक्त आरोहण किए। आरोहण शब्द आप जानते हैं ना, चढ़ना। तो इसी की यादगार में जनवरी 14 तारीख एक त्योहार आता है, आप जानते होंगे,
मकर संक्रांति।
संक्रांति कहते हैं। ये संक्रांति का अर्थ आप जानते होंगे, उस दिन सूरज क्या करता है, अपना पथ बदलता है। इसकी भी एक कहानी है, शास्त्रों में आता है, सूर्य देव उस दिन अपना रथ बदलता है। इसका अर्थ क्या हुआ? ज्ञान सूर्य शिव बाबा जनवरी 18 तारीख अपना रथ बदल दिया, साकार रथ छोड़ के अव्यक्त रथ, उस पर आरोहण किया, उस पर चढ़ा बैठा। तो उस दिन से अव्यक्त पाठ बाबा का शुरू हो गया ना, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होते हुए भी शिव बाबा का साकार माध्यम बनके, दादी गुलजार दादा इतने सालों तक हमारी शिक्षा दीक्षा और पालना की। तो अव्यक्त मास में खास तौर पर बाबा हर 18 जनवरी की मुरली में, आपने सुना होगा, ये स्मृति दिवस क्या है, समर्थि दिवस है, अपने आप में समर्थ सामर्थ्य भरने का दिन है। कौन सा सामर्थ्य भरना है? बाप समान बनने का। कल भी आपने अव्यक्त मुरली में सुना होगा ना, बाबा ने क्या कहा, बाबा की क्या इच्छा है बच्चों के प्रति, बाप समान बने। बाप समान बनना अर्थात अव्यक्त फरिश्ता बनना, अव्यक्त फरिश्ता बनना अर्थात देह में रहते हुए भी ज्योतिर्काया में रहने का अभ्यास करना। आप लोग तो जानते होंगे, हर जीवात्मा इस शरीर में है, हर आत्मा जो शरीर में है उसका स्थूल शरीर के साथ साथ एक सूक्ष्म शरीर होता है। आज विज्ञान भी इसको मान लिया है। एक किरलियन नामक एक व्यक्ति था, किरलियन फोटोग्राफी नाम से मशहूर है। वो जंगल जंगल में जाके फोटो निकालता था। तो एक बार उसने एक पेड़ का पत्ते का फोटो निकाला। वो पत्ता जो है कटा हुआ था, लेकिन जब उसने फोटो निकाला उसके ऊपर, वो फोटो में वो जो कटा हुआ था ना पत्ता, उसके आगे उसका पूर्ण रूप का वो सफेद कलर का था। ये था काला कलर, उसके आगे जो कटा हुआ था वो सफेद था। तो इसी प्रकार हर स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है। बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे हूबहू अगले कल्प भी तुम्हें यही शरीर मिलेगा, है ना? 5000 साल के बाद आपको यही शरीर कैसे मिलेगा? यही रूप, यही हाइट, यही कलर, यही नाक, यही कान, कैसे मिलेगा? ये कहा जाता है सूक्ष्म लोक में हर आत्मा वो जितना जन्म लेते हैं, जितने शरीर लेता है, उतने सूक्ष्म शरीर वहां रहते हैं। जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करने से पहले उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके उसके द्वारा आता है, ऐसे विश्वास है, ऐसा कहते हैं। तो उसके अनुसार ये स्थूल शरीर भी एडजस्ट, जैसा नहीं वो एक ये बनाते हैं ना सैंपल, जैसा अगर वो शंख बनाना है तो उसका जो होता है
ढांचा,
हाँ, उसके ऊपर मिट्टी डाल के शंख बना देते, बन जाता है। उसी प्रकार हर सूक्ष्म शरीर उस शरीर के अनुसार, जो मां के घर में शरीर अपने रूप रेख करता है। तो इसी प्रकार बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे अपने आप को सूक्ष्म वतन में क्या देखो, अपना संपूर्ण रूप देखो। जैसे नहीं हम घर में गांव में एक ये होता है लकड़ी का कपड़ा उतार के उसमें डालते हैं ना, फिर जब चाहे पहन लेते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म वतन में हरेक अपना अपना वहां सूक्ष्म शरीर देखो, उस शरीर में विराजमान हो जाओ। ऐसे ही देवता स्वरूप का जो शरीर है, वो देवता स्वरूप का भी शरीर कपड़े जैसा पहनो, सूक्ष्म शरीर को भी पहनो, स्थूल वो देवता शरीर को पहनो, उस तरह अनुभव करो मैं उस शरीर में हूं। इसलिए बाबा कहते बच्चे हरेक को, जैसे बाबा कहते ना आत्मा को देखो इस शरीर में, वैसे हमें ये प्रैक्टिस करनी है इस जनवरी मास में। इस शरीर स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, प्रकाश में शरीर है, उस प्रकाश में शरीर से मैं चलता हूं और हर आत्मा उस प्रकाश में शरीर में बैठी हुई है, वो भी धारण की हुई है, वो भी ऐसी चलती है। जैसे आत्मा को देख देख के प्रैक्टिस करते करते हम आत्मा बन जाते हैं, जब जिसको भी हम देखते आत्मा दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार जब हम हरेक शरीरदारी को सूक्ष्म शरीरदारी समझेंगे तो इसको समझते 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 अभ्यास करते करते प्रैक्टिस करते करते आप जिसको भी देखो सूक्ष्म शरीर दिखाई पड़ेगा। जब सूक्ष्म शरीर देखने वाला क्या होता है, वो भी सूक्ष्म शरीरधारी होता है। ये अभ्यास खास करने की आवश्यकता है इस महीने में, ये मेरा विश्वास।
वैसे कई बार जैसे हमने सुना है ना, अव्यक्त मास में आप जो संकल्प करो, चाहे वो स्थिति का हो, आपको जिस अवस्था में पहुंचना हो, तो इस मास में बोलते हैं कि बाबा की एक्स्ट्रा मदद मिलती है। ये कई बार जैसे 18 जनवरी की जो मुरली होती है, बाबा ने भी मेंशन किया है कि विशेष जो प्रसारित करते हैं तो एक्स्ट्रा मदद बाप दादा की मिलती है। तो ऐसा भी हमें स्थिति बनाने में बाबा की मदद मिलती है, ऐसा आपका विश्वास है?
जरूर मिलती है। अब कोई सीजन होता है ना, आप शायद जानते हैं, कोई सीजन खास सीजन होता है उस समय ऑफर है ना, ऑनलाइन खरीदते हैं लोग, ऑनलाइन में कुछ ऑफर होता है, सीजन होता है हॉलीडे, उसमें खास डिस्काउंट मिलता है ना। उसी प्रकार जब बाबा कहते हैं ना भाई 6 महीना करो, 15 दिन करो, कल भी बोला था कम से कम 10 मिनट 24 बार करो, अगर हम जब बाबा कहते हैं तब करते हैं, उसको करने के लिए बाबा कहा है, बाबा ने भगवान ने कहा है, तो अगर शक्ति हमारे में न होते हुए भी वो शक्ति देता है। जब हम ज्ञान में आए थे तब बोला करते थे, अगर आपको बहनों ने कोई सेवा बता दी ना नहीं बोलना, भले आप जानते नहीं है, आप कभी किया ही नहीं, फिर भी अगर आपको उन्होंने ऑफर किया भाई ये काम सेवा करो तो हाँ बोलो करो। जब सेवा किसने दिया? बहनों ने नहीं दिया, बाबा ने दिया। जब बाबा ने दिया है उसको पता है, अगर उसको करने वाले में शक्ति भी नहीं है, सामर्थ्य भी नहीं है, कला भी नहीं है, फिर भी बाबा क्या करता है? देता है। जिसमें योग्यता है उसको आगे बढ़ाता है, जो योग्य है लेकिन योग्यता नहीं है उसमें योग्यता भर देता है। ये बाबा की विशेषता। इसलिए अव्यक्त मास में अगर हम जितने जितने ये शरीर में होते हुए भी अव्यक्त अवस्था का अनुभव करते जाएंगे, बाबा जरूर आपको मदद करेगा। और हमें भी, मुझे भी अनुभव है, जब अव्यक्त जब तपस्या वर्ष चल रहा था उसमें बाबा ने बोला तपस्या वर्ष आचरण करो, हम लोगों को पता नहीं था कैसे तपस्या करना है, लेकिन मुझे उस साल पूरा 2 बजे मुझे ऑटोमेटिक, कोई ना अलार्म है ना कुछ नहीं, ऑटोमेटिक आंखें खुल जाती, सिर्फ हमें संकल्प करना है, क्योंकि संकल्प पे बहुत शक्ति है। आप जैसे सोचोगे, कहावत है ना, जैसे सोचोगे वैसा बनोगे, यद भावम तद भवति। इसलिए इस अव्यक्त मास में बाबा ने जो डायरेक्शंस दिए है ना, आप एक एक निश्चिंत होके अब फॉलो करते जाओ, जरूर आपको बाबा मदद करेगा।
बिल्कुल, वैसे जैसे हम मधुबन में रहते हैं तो देखा है, विशेष लोग 18 जनवरी मास में 2 बजे उठते हैं, और मैं पांडवन में था तो देखा कि वहां पे हॉस्पिटल से कुछ मधुबन निवासी विशेष ऐसा लक्ष्य रखते थे कि 2 बजे आके वो बाबा के कमरे में। और सच में है ना, जैसे कई बार होता है ना, कोई हमने एग्जाम क्रॉस करने के बाद एग्जाम हॉल से आते हैं तो वो एक सूक्ष्म प्राप्ति होती है कि हमने ऐसे, तो उनके उनको ये तुरंत प्राप्ति तो होती थी, लेकिन उनके जीवन में भी देखा, आज हम उनको देखते हैं वो बहुत अच्छे तपस्वी हैं, बहुत अच्छे चिंतक हैं, बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं जिन्होंने ये सूक्ष्म प्रसारित किया। वैसे अभी हम नेक्स्ट, क्योंकि आप वन ऑफ सीनियर हो मधुबन में, बहुत सालों से हो, आपने बड़ी दादी को देखा है, यू नो दीदी को देखा है, तो उस जमाने में हमें थोड़ा लेके जाइए कि जब 18 जनवरी होती थी तो उस समय मधुबन का क्या माहौल होता था, दादी विशेष क्या पुरस्कारित करवाती थी, क्योंकि हम तो काफी बाद में आए हैं, मैं 97-98 में भी देखा, 18 तारीख के दिन जैसे सन्नाटा होता था बिल्कुल, यू नो, तो वो माहौल को हमें थोड़ा सा प्लीज।
मैं पहली बार आया था मधुबन 1975 जनवरी मास में आया था, जब मेडिटेशन हॉल बना हुआ था, जनवरी फर्स्ट वीक में बाप दादा का जो पदरामणी हुई थी उस समय हम आए थे, तो दादी और दीदी 1 महीने पहले ही वायुमंडल तैयार करना शुरू करते थे, अगले महीने जनवरी मास है, अव्यक्त मास है, सब लोग अपने अपने अवस्था बनाने के लिए तैयारी करो, जितना हो सके उतना अपने सेवा पहले पूरा करके समय निकालो। और जनवरी महीने में कोई भी बाहर नहीं जाता था, वहां सेवा के लिए कहीं भी कुछ भी काम हो जनवरी महीने में जितना हो सके उतना वो अपने आप मधुबन में रहने के लिए दादी दीदी बोला करते थे। और सेकंड टर्म में आया 18 जनवरी के दिन। 18 जनवरी में हर साल जो शांति पहले शांति स्तंभ के पास दादी दीदी सौगात दिया करते थे, क्लास के आने के बाद शांति स्तंभ में दीदी दृष्टि देती थी, दादी सौगात देती थी। तो दीदी, आप लोगों ने दीदी को किसने कितने लोग देखा, हाथ उठाए, किसने देखा? नहीं देखा। दीदी की जो आंखें है ना, क्या आंखें है। वो कहते हैं ना, कृष्ण मुंह खुला तो उसके अंदर गोला दिखाई पड़ा विश्व का। वो आंखें इतनी चमकती थी, इतनी चमकती थी, वो देखे तो जैसा नहीं, वो काले काले, वो उसमें पानी में एक मोती मोती तैरा इस तरह चमकते थे। तो हर पहली बार मेरे को तो ज्ञान में आने पर कभी भी साक्षात्कार नहीं हुआ था, पहली बार जब दादा ने मुझे दृष्टि दिया, साकार बाबा का दृश्य दिखाया पड़ा, जैसे खड़े हुए, जैसे नहीं पीछे हाथ में खड़े हुए, वो जो शांति स्तंभ के उस ट्रेनिंग सेंटर के उस तरफ कोना है, वहां खड़े होकर दीदी दृष्टि दे रहे थे। तो उस समय 18 जनवरी आया माना, यज्ञ कहानी सुनाते थे, बाबा कैसे होते थे, दादिया कैसे ज्ञान में आई, बाबा कैसे उनकी पालना की, बाबा की दृष्टि कैसी होती थी, बाबा के साथ जो होते थे भाई बहन आते थे, वो लोग बाबा के बाबा को देखने के लिए क्या क्या कोशिश करते थे। मुझे एक घटना याद आती है, एक कोई भाई था शायद पंजाब का या हरियाणा का कहीं का, वो टेलर था, वो बाबा के कपड़े कुर्ता सिलाई किया करता था। तो वो क्या करता था, पहले माप लेना पड़ता था ना, तो बाबा के कपड़े बाबा के जो ना कुर्ते के लिए माप लेता था, माप लेते लेते गले लगाता था बाबा। तो वो रोज माप लेने के लिए आया करता था। तब दीदी को डाउट हुआ, ये तो माप कितने बार लेता है, ये कपड़े सिलाई करने के लिए एक बार काफी है ना, ये तो रोज रोज क्यों आता है। तो उसने एक दिन दीदी ने मना कर दिया, भाई क्यों ऐसे गाते हो। तो उसने बाबा को देखने लगा, तो बाबा ने बोला, बच्ची इसको बाबा से गले लगाना की इच्छा होती, इसलिए इस बहाने से आता है। इस तरह बाबा जो ब्रह्मा बाबा थे, उनका हर देखो शरीर भी, दादिया कहते उनका शरीर भी इतना मृदु था, इतना मृदु था कि जैसा रुई जैसा। ये शरीर भी किस आधार पर बनता है, संकल्पों के आधार पर। जो आत्मा जितना श्रेष्ठ संकल्प करती है और जितना शुभ संकल्प करती है, हरेक के प्रति भलाई का, हरेक को भला, हरेक का भला हो, हरेक को अच्छे हो, हरेक मेरा अपना है, ये भावना से जो संकल्प करती है ना, उसके आधार पर उस वाइब्रेशंस उस शरीर को भी उतना ही सुंदर और उतना ही मृदु बना देते। इसलिए कई बार साकर बाबा ने भी बोला है, अगर किसी को शरीर तन इस जन्म में तन अच्छा मिला है, निरोगी काया मिला है, सुंदर काया मिला है, उसका आधार क्या है, श्रेष्ठ कर्म। पिछले जन्म में उस आत्मा ने श्रेष्ठ कर्म किस आधार पर बनते हैं, श्रेष्ठ संकल्प पर। तो इस संकल्प का बहुत ही शरीर पर असर पड़ता है। इसलिए बाबा भी हर आत्मा को अपनापन की दृष्टि से देखा। इसलिए हमें भी बाबा का ये एक आदर्श है कि हम भी बाबा के बच्चे बनने के बाद हर एक के प्रति, वो कोई भी हो कैसे भी हो, ये मेरा भाई है, मेरा भाई है, इसका भला हो भले हो। इसलिए बाबा कहता अपकारी को भी उपकार करो। ये कैसा हो सकता है अपकारी को भी उपकार करना, हम उपकार किए हुए व्यक्ति को उपकार नहीं करते, अपकारी को कैसे उपकार करेंगे, जब उसको अपना समझेंगे। क्योंकि ज्ञान मार्ग में अपना समझना बहुत जरूरी है, अपना तब समझेंगे तब ज्ञान यथार्थ समझेंगे। इसलिए बाबा की ये विशेषता थी हर आत्मा को, जो भी हो, बूढ़ा हो बच्चा हो जैसे हो, हर एक को यही समझते बाबा मेरा, किस आधार पर, ये मेरापन होने के कारण। इस प्रकार दादिया ये जो कहानी सुनाते थे ना, बाबा बाबा ऐसे देखते, ऐसे बैठ जाते, तो देखने वालों को बाबा कैसे दिखाई पड़ता था? श्री कृष्ण दिखाई पड़ता था। जब दादियां अपना अनुभव सुनाती थी बाबा के साथ के, तो मुझे बहुत दुख होना शुरू हो गया।
दुख क्यों?
क्योंकि इन लोगों ने बाबा से इतनी सारी प्रेरणा ली, हम लोग वंचित रह गए। सिर्फ 4 साल का अंतर आ गया। 4 साल पहले अगर मैं ज्ञान में आता तो मैं साकार बाबा को देख लेता, उनकी प्रेरणा ले लेता, उनका सानिध्य पा लेता। ये मुझे बहुत अंदर से है ना, बहुत माना बहुत दुख देता था। तो क्योंकि भक्ति मार्ग में हम लोग लौकिक में शिव भक्त है, तो वहां हमारी मान्यता थी जहां शिव है वहां नंदीगण हमेशा होता है। आप तो देखा होगा, अगर शिव के सानिध्य पाना है तो सबसे पहले नंदी के जो है ना सींग, उसके अंदर से देखना होता है, बीच में से, तब जाके शिव का दर्शन होता है, ऐसा माना जाता है। मतलब नंदी के बिना शिव का दर्शन नहीं होता। तो इसके कारण उसको हमारे मान्यता में नंदीगण को बसवा बोलते हैं। बसवा, बसवा मन शिव का वाहन।
और वैसे ऐसे भी मान्यता कि अगर उसके कान में कुछ बोला तो वो सीधा शिव तक।
सीधा उसका। तो देखिए बाबा कहता है, कई बार बाबा बोलते ना, ये ब्रह्मा के दिल से उतरे माना मेरे दिल से उतरे, तो इनके दिल पर चढ़ा माना मेरे दिल पर चढ़ा, जो भी ये कहते हैं उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। लेकिन ये जो कहानी है ना ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की, बड़े विचित्र कहानी है। अगर इसको हम देखे जाए तो शास्त्र में भी इसका वर्णन है, भक्ति मार्ग में भी वर्णन है। अगर मैं उसको यहां छेड़ूंगा तो फिर टॉपिक अलग हो जाएगा।
नहीं, थोड़ा सा में।
क्योंकि ये जो है ना संगम युग, इतना वंडरफुल संगम युग है, यहां 3 रोल इकट्ठे चलते हैं, एक शिव बाबा का, एक ब्रह्मा बाबा का, एक कृष्ण का। ये तीनों मिला के ये संगम युग बना हुआ है और आगे भक्ति मार्ग भी बना हुआ है। जब हम देखते हैं ये ब्रह्मा कौन है, कई बार बाबा बोलता है, एक बार दीदी से पापा, अब एक बाप दादा मेडिटेशन हॉल में पूछ रहे थे, क्योंकि दीदी के साथ पापा बड़े चिटचाट करते थे ज्ञान के, इतना मजेदार होता था वो सुनने में, किसी से नहीं, बाबा उनको होमवर्क देता था। तो बाबा ने एक बार बोला, दीदी अगर ब्रह्मा विष्णु बनता है तो शंकर कौन बनता है? तो दीदी ऐसे बैठती थी हमेशा बाबा के सामने ऐसा। तो सोचना, सोच के इसके बारे क्लास कराओ। तो फिर और एक बार बाबा ने पूछा दीदी से, दीदी साकार बाबा श्रेष्ठ है या निराकार बाबा श्रेष्ठ है? इन लोगों का जो वार्तालाप है ना, वो जो भागवत में जो आता है ना,
जैसे
गोपियों के साथ श्री कृष्ण कैसा करता था, बड़े आनंद आता था देखने वालों को, उनको भी। उस प्रकार दीदी के साथ बाबा ऐसे प्रश्न पूछता था, तो दीदी मुस्कुराती थी। किसी ने पीछे से बोला, बाबा साकार में बाबा श्रेष्ठ है, समझे? साकार बाबा श्रेष्ठ है, शिव बाबा श्रेष्ठ है, साकार में शिव बाबा श्रेष्ठ है। इसका अर्थ समझ में आया आपको?
जब ब्रह्मा बाबा के
सिर्फ साकार बाबा श्रेष्ठ नहीं है, सिर्फ शिव बाबा भी श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि साकार नहीं तो शिव बाबा का कोलू कैसे पता पड़ेगा? मात पिता है, ज्ञान का सागर है। अगर शिव बाबा नहीं है तो साकार ब्रह्मा बाबा कैसे पता पड़ेगा? जब दोनों एक हो जाते हैं तब उसका महत्व। तो पापा बड़े राज भरे हंसी हंसी, वो जो उस भाई बोला था ना उसके तरफ देख के बाबा ने बड़े मुस्कुराया। तो वो दृश्य ये सारे है ना चिटचाट देखने वाले होते हैं अब एक बाप दादे के साथ। तो आप लोगों ने हिस्ट्री हॉल में एक त्रिमूर्ति चित्र देखा होगा, देखा है ब्रह्मा विष्णु शंकर का, उसमें क्या विशेषता देखी आपने? किसी ने देखा, कोई विशेष फाइंड आउट किया
उसमें? वैसे श्री लक्ष्मी नारायण भी एक तरफ और गोला भी है और
त्रिमूर्ति चित्र में, त्रिमूर्ति चित्र में क्या विशेषता है? देखे, ध्यान दिया किसी ने? क्यों? ये तो शिव बाबा ने बनवाई थी ये चित्र, ये तस्वीर शिव बाबा ने बनाई थी। ब्रह्मा की फेस विष्णु पर भी है और शंकर पर भी है, और उस शंकर में गले में ना सांप है ना कपड़े है। आजकल के त्रिमूर्ति में ये सारे आते हैं, सांप की जटा गिटा सब दिखाते, लेकिन बाबा ने जो बनाया है ना, क्या अर्थ है इसका? कोई बताएंगे? तीनों का फेस एक ही क्यों बनाए?
राइट, वो सूक्ष्म, जैसे सूक्ष्म वतन निवासी है ऐसा तीनों, ऐसा
इसका अर्थ है। जो दीदी से बाबा ने प्रश्न पूछा था, जब ब्रह्मा ही विष्णु बनता है तो शंकर कौन बनता है? वो भी ब्रह्मा ही बनता है, क्योंकि बाबा ने एक बार बोला था सूक्ष्म वतन जो त्रिमूर्ति है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर जो तीनों परी है ना, इन तीनों परी में सिर्फ ब्रह्मा के अंदर एक आत्मा है, बाकी में कोई किसी में भी आत्मा नहीं, वो सिर्फ दिखाने के लिए रखा हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ, ये ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये रोल है, पात्र जिसको बोलते ना, ये कोई व्यक्ति नहीं, ये कोई आत्मा नहीं, तीनों ये तीन स्टेजेस है, तीन पार्ट है, तीन कैरेक्टर है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों पार्ट हरेक को बजाना होता है संगम युग में। शास्त्रों में एक बात आती है, ब्रह्मा अपर ब्रह्मा पर ब्रह्मा, ये शब्द सुना आप लोगों ने? ब्रह्मा अथवा ब्रह्म, संस्कृत में ब्रह्म बोलते हैं, हिंदी में ब्रह्मा बोलते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्म अपर ब्रह्म पर ब्रह्म, तीन शब्द है। उसी प्रकार ये जो गुरु की महिमा करने के लिए एक श्लोक सुनाते हैं ना, क्या सुनाते हैं?
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पारब्रह्म
है। इसमें कोई अंतर है? गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री
गुरुवे नमः।
गुरुवे नमः, ब्रह्मा भी गुरु है, विष्णु भी गुरु है, शंकर भी गुरु है, लेकिन जो परब्रह्म है उस गुरु को तस्मै श्री गुरु है, उसको हम मेरे नमस्कार, मेरे शरण, मेरा नमस्कार। इसका अर्थ है ब्रह्म के तीन है। ब्रह्म माना संस्कृत में ज्योति होता है, ज्योति एक है, ज्योति दूसरा है परब्रह्म, परम ज्योति, और तीसरा है अपर ब्रह्म, जो परम नहीं है वो ज्योति। एक है ज्योति, दूसरा है परम ज्योति, तीसरा है जो परम नहीं है वो, ये तीन है। तो ब्रह्म कौन है? हम सब आत्मा ज्योति स्वरूप है, परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है, लेकिन वो परब्रह्म सुप्रीम सोल सुप्रीम लाइट, और अपर ब्रह्म जो सुप्रीम नहीं है लेकिन ब्रह्म से भी हाई लेवल, ये कौन है? ब्रह्मा बाबा। सूक्ष्म वतनवासी को, स्थूल वतनवासी को, ये तीन तरह के ब्रह्म है। इसलिए उन लोगों ने जो साधु संन्यास जिसने बोला अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि तो बोल दिया लेकिन उनको समझ नहीं आया, ब्रह्म तो है लेकिन वो क्या समझ बैठे? परब्रह्म समझ बैठे। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ज्योति हूं, राइट, मैं आत्मा हूं, करेक्ट है, लेकिन वो समझे क्या है? शिवोहम शिवोहम शिवोहम, भज गोविंदम भज गोविंद, न पापम न पुण्यम न धर्मम न कर्मम, आखिर शिव होम शिव, मैं ही शिव बोलना शुरू किया। लेकिन शुरुआत तो उन्होंने यही किया था, मैं आत्मा हूं, वो परमात्मा है, मेरा पिता है। ये इसी प्रकार हर आत्मा इन स्टेज को, इस पार्ट को बजाना पड़ता है। इसलिए आप भी ब्रह्मा है, आप भी विष्णु है, आप भी शंकर है। तो पार्ट कैसा है? ब्रह्मा अर्थात स्थापना करता है ना, स्थापना करने वाला। तो आप या हम या मैं खुद अपनी रचना करता हूं, अपने संस्कारों को रचना करता हूं, अपनी सत्युग संस्कारों को भरता हूं, स्थापना करता हूं, और मैं उनको ज्ञान योग धारणा सेवा को उनकी पालना करता हूं, और मेरे में जो बुराई है उसका विनाश करता हूं। स्थापना पालना विनाश। इसलिए गुलजार दादी कई बार कहती थी अपने अनुभव में, हम बच्चे थे लेकिन बाबा साकर बाबा रोज हमें बोलते थे, बच्चे तुम त्रिमूर्ति हो, सुबह उठते अपने आप को क्या समझो, ब्रह्मा समझो, दोपहर में विष्णु समझो, रात को सोते समय शंकर समझो। इसलिए वास्तव में शंकर नामक चीज कोई है ही नहीं, वो रोल है। विष्णु भी नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो विष्णु कौन है? चार भुजा वाला कोई होता है क्या? वो सिंबॉलिक, लक्ष्मी नारायण उसका सिंबॉलिक। ब्रह्मा है या नहीं है? इसलिए एक ब्रह्मा बाबा ही ब्रह्मा की सोल ही है, बाकी विष्णु शंकर की कोई सोल नहीं, लेकिन यह एक्टिंग। इसलिए बाबा कल भी बोला था, कल मुरली में बोला, ज्यादा लंबा तो
नहीं।
ब्रह्मा बाबा की विशेषता क्या थी उसमें बोला ना, ट्रस्ट मैं करने वाला नहीं है ना, करण करावनहार, करण करावनहार। इसका अर्थ क्या है? शिव बाबा को बोलते ना करण करावनहार, इसका मतलब क्या है? कौन बताएंगे? शिव बाबा बोली, बहने कोई बोले करण करावनहार, अर्थात करके कराने वाला। शिव बाबा पहले करता है फिर बच्चों से करवाता है, करण करावनहार, जानी जाननहार। क्योंकि संगम युग इतना वंडरफुल युग है, हम जो 5000 साल वर्षों में जो करते हैं ना पाठ, वो सब पाठ शिव बाबा 100 साल में कर लेता है। थोड़े दिन पहले एक साकर मुरली में बात आई थी, आपने सुना होगा, मेरा जैसे बड़ा गृहस्थी कोई नहीं, क्योंकि संगम में ब्रह्मा बाबा के शरीर में बैठकर बाबा पिता भी बनता है, माता भी बनता है, सखा भी बनता है, पति भी बनता है, साजन भी बनता है, पुत्र भी बनता है, पोता भी बनता है, है ना? कितना वंडरफुल। कई बार बाबा बोलते हैं बच्चों को, देखो कितना बाबा अपने को भी कैसे जैसे है ना, हम धन्य धन्य मानते हैं ना बाबा भी। कई बार बच्चे देखो मैं ब्रह्मा की किटकियों से तुम बच्चों को देखता हूं, आप फील करते हैं? मैं इन किटकियों से तुम बच्चों को देखते कि हर्षित होता हूं। फिर बाबा कहते हैं बच्चे देखो मैं बच्चों के साथ खेल नहीं सकता है क्या, घूम नहीं सकता है क्या, चिटचाट नहीं कर सकता क्या, कर सकता नहीं कर सकता, देखो ये सब क्यों बोलता है बाबा? तुम बच्चे भी ऐसा अनुभव करो, बाबा मेरे साथ है, मेरे साथ खेल रहा है, मेरे साथ खा रहा है, मेरे साथ नहा रहा है, मेरे साथ चल रहा है। जब मैं बोल रहा था ना मुझे बहुत दुख होता था, तो क्योंकि भक्ति मार्ग में हम शिव को ही माता पिता मानते थे, तो मैं तो खास ये शिव कहते भी शंकर का ही याद करते थे ना, तो हमेशा शंकर और पार्वती का फोटो जो होता था ना, तो उसके बीच में गणेश बैठा रहता है शंकर के इसमें गोद में, तो वो चित्र देख के मुझे हमेशा याद आता था मैं ऐसा बनू, मेरा ही चित्र है, ऐसा फीलिंग आता था। जब हम लौकिक में पूजा करते थे, ये जो आपने देखा होगा एक छोटा सा लिंग होता है, इष्टलिंग बोलते हैं उसको, एक होता है स्थावर लिंग मंदिरों में जो स्थापन किया होता है, स्थावर लिंग माना हम मंदिर जाके पूजा करने वाला है, एक इष्टलिंग होता है छोटा सा गले में डालते हैं, तो जहां भी इष्ट इच्छा होती है वहां इस तरह से उसको दृष्टि देते हैं, एकाग्र करते हैं उसको, वहां एक पॉइंट होता है जब हम वो अगरबत्ती ऐसे घुमाते हैं ना वो ज्योति दिखाई पड़ते हैं, हम उसमें ज्योति बिंदु को कॉन्सेंट्रेशन करते थे, शिव ऐसा कहा जाता था, कहते थे शिव ओम नमः शिवा ओम नमः शिवा, फिर भी शंकर को पूजा करते थे क्योंकि शिव शंकर एक ही समझते थे। तो उस समय मैं हमेशा बोलता था हे भगवान तुमको तो सब माता पिता कहते हैं है ना, तो फिर जब हम तुम्हारे बच्चे हैं या तुम हमारा माता पिता हो तो हमारे पास क्यों नहीं हो, जब लौकिक में जब माता पिता के साथ घूमते फिरते हैं तो हमें क्यों नहीं दिखाई पड़ते, कहां हो, तो हमें एक बार तो कम से कम दर्शन दो। तो इतने में ना पूरा भाव विभोर होके आंखों में आंसू बहता था, मैं कॉलेज में पढ़ता था इसके सिवा मैं कुछ नहीं करता था, न गुरु के पास न मंदिर न मठ कहीं नहीं, बस दिन में एक बार जरूर स्नान करके बाबा पूजा करके फिर उसके बाद। तो ये जो मेरे को होता था ना, तो अभी ज्ञान माने के बाद पता पड़ गया शंकर कौन पार्वती कौन शिव बाबा कौन, तो शंकर है शिव बाबा का साकार रूप एक पार्ट। तो ब्रह्मा बाबा या विष्णु या शंकर तीनों एक ही है, तो ब्रह्मा बाबा अगर पार्वती है या शंकर है तो हम इस जन्म ज्ञान मिलने के बाद भी संगम युग हम देख नहीं पाए, बहुत फील होता था। तो फिर जब बाबा ने एक बार बोला था बच्चे जैसा इन लोगों ने साकार में मुझे अनुभव किया ना वैसा अनुभव आप भी कर सकते हैं, कैसे अनुभव करना, ये हमारे ज्ञान स्वरूप में एक भाई को देखा था मैंने, बाबा बोला था बच्चे मेरे से बात किया करो चलते फिरते, वो भाई चलते चलते बोलता था बाबा मैं ऐसा कर रहा हूं मैं ऐसा जाता हूं। तो उसको देख के मुझे याद आया जब उन लोगों ने बाबा को साकार में देखा, हम साकार में हम क्यों नहीं अनुभव कर सकते हैं ना, जैसे हम चलते हैं तो भले दिखा नहीं पड़ता लेकिन हम तो अनुभव कर सकते हैं, पकड़ के चलते। आजकल तो बहुत विज्ञान भी इसके बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं, कई बोलते हैं ना वो अपने माँ शरीर छोड़ दिया तो फोन में बात करते हैं मम्मी कैसे हो, वो फीलिंग करता है मम्मी ऊपर से मेरी बात सुन रहे। जब वो लोग जिसको ज्ञान है ही नहीं पता नहीं, लेकिन हम क्यों नहीं कर सकते जब बाबा प्रत्यक्ष में है अभी। तो इस प्रकार जब बाबा ने मेरे को बुक्स बनाने की सेवा दी तब उसमें भाग्य विधाता नाम किताब आपने देखा होगा या पढ़ा होगा, उस किताब बनाने के मुझे बाबा ने एक सेवा दी। तो उस बुक बनाते बनाते मेरे को ये साकार बाबा का साथ का अनुभव बहुत होने लगा, क्योंकि उन अनुभव को करते करते करते। और दूसरी एक किताब है ईश्वरीय ज्ञान कोश, आपने देखा वो साकार मुरलियों का संग्रह, उस किताब बनाते समय तो दो है परमात्मा के बारे में, तो उसमें स्पष्ट है परमात्मा कैसे अपना पाठ बजाता है। तो वो किताब बनाते समय मुझे साकार बाबा का साथ का अनुभव बहुत मैंने किया, क्योंकि वो किताब बनाने में लगभग 3 साल लग गए, वो 3 साल तक मैंने लगातार ये बाबा का साथ का अनुभव बहुत किया। इसलिए ये ईश्वरीय ज्ञान अनुभव का है, देखने का नहीं। आप जितना सूक्ष्म को स्थूल में अनुभव करते हैं उतना आपका अनुभव इस अव्यक्त मात में जरूर होगा।
सर जैसे आपने अनुभव की बात की, ये जब आपने जो बुक कंपाइल की तो वो कैसा अनुभव था, आपने साकार बाबा को कैसे अनुभव किया?
जैसे देखिए वो जगदीश भाई के एक आर्टिकल में आता है, वो जब पहली बार जब बाबा को देखा वो उनको तो शुद्ध बुद्ध खो लिया। रात 12 बज गया बाबा से वापस आते 11 बज गया तो वापस आया तो उनको नींद नहीं आ रही थी तो वो ऐसे लेटे रहे। जब आंखें खोली सामने बाबा खड़ा हुआ था। उनके मंद की जो आवाज है ना साकर बाबा को पहुंच गया था। तब बाबा बोले बच्चे सो जाओ।
सुबेरे मिलेंगे।
तो सो गए। उसके बाद उसी प्रकार जब मैं पहली बार बाबा से मिलने आया था तो जब हम लोग ट्रेन में आते थे उस समय आना है तो 3 ट्रेन चेंज करनी पड़ती थी, मीटर गेज, ब्रॉड गेज से मीटर गेज, फिर मीटर गेज, यहाँ फिर बस में चढ़ना पड़ता था। अभी तो बहुत रोड विस्तार बना हुआ है, पहले छोटे सा बहुत माना कंजस्टेड रोड था, आने के लिए 2 घंटे लगते थे बीच बीच में खड़े होकर। तो उस समय हम लोग जब बस चढ़ते थे ना, बस में बैठे चढ़ते थे देखो हम आगे, क्योंकि भक्ति मार्ग में ये भावना थी ना, जो शिव कहाँ रहता है, कैलाश पर्वत में रहता है। तो हमें तो पता था जब ज्ञान मिल गया तो बाबा यहाँ माउंट आबू में आता है, माना कहाँ आता है, यही तो सच कैलाश पर्वत है। तो ये भी था कैलाश पर्वत और श्रीशैल पर्वत। श्रीशैल नाम सुना है ना, आंध्र प्रदेश में है वो। श्री माना श्रेष्ठ, शैल माना पर्वत, पत्थर वाला, श्रेष्ठाति श्रेष्ठ, वहां भी शिव रहता है। तो काशी में भी शिव रहता है। तो काशी हो या कैलाश हो या श्रीशैल हो, एक कौन सा है, अबू पर्वत है। तो मुझे अंदर इतनी खुशी हो रही थी मैं भगवान के पास जा रहा हूं। तो और एक संस्कृत में श्लोक है आपने सुना होगा, श्रीशैलम शिखरम दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते। जो व्यक्ति श्रीशैल दर्शन करता है उसको पुनर्जन्म नहीं मिलता। तो बाबा क्या कहते, जो संगम युग में आते हैं बाबा से मिलते, दोबारा उनका कलयुग में पुनर्जन्म नहीं होता। तो इस खुशी में कितना बड़ा भाग्य है, ये हम दिन रात, हम 3 दिन सफर करना पड़ता है, 3 दिन तक मुझे नींद नहीं, सोया नहीं, मैं ट्रेन में इधर उधर बैठना सोना या बस आकर पहुंचे तो बाबा से मिले। तो हम लोगों को बाबा ने पहली बार मिला, मेडिटेशन में मुरली सुनाई और पर्सनल मुलाकात कमरे में किया। बाबा कमरे है ना अभी, वहां छोटा सा ग्रुप था तो एक व्यक्ति को बाबा वहां जो ये है ना गद्दा पर बैठा करते थे, सामने चार पांच पर्सनों को बिठाते थे। तो बाबा के सामने बैठा मैं, ये इसलिए सुना रहा हूं जो मुझे कैसे अनुभव हुआ। जब बाबा के सामने बैठा तो बाबा ने टोली मुंह में रखा तो वरदान दिया, बच्चे कैसे हो, तो होश ही नहीं है, बाबा ने क्या पूछा क्या बोला मुझे कुछ भी सुना ही पड़ा। जो बगल में बैठे थे हमारे जो बड़े भाई वो सुना रहे थे बाद में, मैं सिर्फ सिर हिलाया। तो बाबा ने बोला ये तो पुरानी आत्मा है, योगी आत्मा है, ये मैंने सुना ही नहीं क्योंकि मुझे होश ही नहीं था। बाबा के सामने इतना एकदम लवलीन हो गया था, बाद में बताया गया ऐसा ऐसा। तो आत्मा जब सच में बाबा के लिए तो होती है ना, मन में जो होता है मुझे बाबा ही चाहिए, तो उस समय आपको जरूर अनुभव होगा। इसलिए ये ईश्वर ज्ञान में अगर आपको कुछ पाना है तो अनुभव करना सीखो, अनुभव कीजिए। अनुभव माना जो स्थूल नहीं है उसको अनुभव करना। अगर समझो बाबा साकार बाबा को हमने देखा नहीं, तो साकार बाबा को जो जिन्होंने देखा है ना, जैसे उन्होंने अनुभव किया, हम सुनते हैं। अगर आप नहीं सुना है तो एक किताब पढ़िए, भाग्य विधाता किताब पढ़िए, अद्भुत जीवन कहानी किताब पढ़िए और मामा वाली किताब पढ़िए। ये किताब पढ़ते पढ़ते आप उन्होंने उनको जो बाबा ने अनुभव कराया वो अनुभव आप खुद करो, अब जरूर बाबा अनुभव कराए। ऐसे मैंने किया। चलते हैं तो साथ में हाथ। आपने देखा बाबा के चित्र में साकार से एक चित्र है, फोटो है, एक छोटा सा बच्चा है, बाबा के हाथ पकड़ के चल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, वॉकिंग जाता है तो वो छोटा सा, इतना सा छोटा बच्चा वॉकिंग जाता है, वो मेरा जैसा ही है, वो देखा तो मुझे बचपन याद आता है। ऐसे बाबा का हाथ पकड़ के मैं नकेले घूमने जाता हूं। ऐसे मैं कई सालों से करता है, इसलिए मुझे लगता नहीं मैंने बाबा को देखा नहीं।
सच में ये तो वंडरफुल होता है। हम लोगों को अभी सौभाग्य मिला कि हम अव्यक्त बाप दादा के सामने दृष्टि लेने का, जैसे मधुबन निवासियों का होता था, जो भी बैठे हैं जो अव्यक्त बाप दादा से मिले होंगे, तो आप लोगों ने महसूस किया होगा जब दृष्टि देते हैं ना बाबा, तो एकदम जैसे सन्नाटा हो जाता है, केवल बाबा, सर्च लाइट वाली बात होती है ना, सेम वही चीज, बाबा की दृष्टि और सब कुछ फूल जाता है। तो ये सच में ये जो अलौकिक अनुभव है भाई साहब, ये तो बहुत ही ना शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। भाई साहब आप, मैं एक पूछना चाहता हूँ, जस एक हमारी बुक है ना ब्रह्मा बाबा की, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत कहानी, वो आपने कंपाइल किया?
नहीं, वो तो बहुत समय शुरुआत में जगदीश भाई साहब ने उसको लिखा और वो दिल्ली में प्रिंट हुई थी, पर उस समय हैंड कंपोज वाले के होते थे ना प्रिंट करने, आज जैसे कंप्यूटर नहीं होते, हाथ से वो कील जोड़ के करते थे, वो कई सालों से पुरानी,
मतलब वो बहुत पहले,
बहुत पहले शुरुआत में।
ओके, तो जगदीश भाई जी के साथ आप इतना रहे, और एक उनके मतलब उन्होंने ये अपने उसमें भी बताया है कि भाई सबको पता चल गया था कि बाबा ब्रह्मा बाबा व्यक्त होने वाले हैं, और बाबा ने उनको दिल्ली भेज दिया, यू नो। तो कभी भाई साहब से आपकी ऐसी बातें हुई कि ब्रह्मा बाबा लास्ट का जो उनका टाइम था, तो उस समय पे उनकी स्थिति कैसी थी, उनकी अवस्था कैसी थी, उस विषय में कभी बना भाई साहब ने कुछ बोला है, कुछ चर्चा की?
भाई साहब सिर्फ वो अंतिम स्थिति का वर्णन नहीं करते, वो कहते अंतिम समय की जो स्थिति है ना, उन्होंने शुरू से देखा है बाबा में। बाबा में जो उन्होंने, जो लोग बोलते हैं ना, हम अंतिम समय बाबा सुनते हो भी नहीं सुनते थे, देखते हो भी नहीं देखते, जो कई लोग बताते हैं ना, ये स्थिति जगदीश भाई साहब ने शुरू से उनमें देखा। उनको जब भी देखते थे वो कहते ये धरती पर है ही नहीं, हो ना ऊपर है ना नीचे, एकदम जैसे आकाश में ना ऐसे खड़े, ऐसा वो अनुभव करते थे। कहते कई बार बोलते तो जब है ना, जब मधुबन आते थे तब बाबा कम से कम 12 बजे तक लाइट आनी रहती थी कमरे में, जब 2 बजे ये उठते थे तब बाबा के कमरे में लाइट जला रहते थे, तो ये इसलिए वो आते सबसे पहले उठते ही लाइट ऑन करते थे। जब वो बाबा देखते थे जगदीश भाई, जो ये जो अभी जो आपने पांडव भवन देखा होगा, बाबा का कमरा है, मेडिटेशन हॉल के बगल में तीन चार कमरे है, तो वहां नया नया बना था वो बिल्डिंग, बाबा उस जगदीश भाई को वहां रखा हुआ था, तो उस कमरे में से इनकी लाइट दिखाई पड़ते थी, इनके कमरे से उनकी लाइट दिखाई पड़ते थे, तो इसलिए वो जगदीश भाई उठते ही 2 बजे लाइट ऑन कर देते, तो बाबा कहते थे देखते थे, तो लच्छू दादे को भेज के बुलाते थे, जगदीश बच्चे को ले आओ, तो कहते जगदीश भाई को बुला के बाबा कई बार अपने मन में जो आते थे ना वो बताते, बच्चे आज ये संकल्प आया बाबा, ये संकल्प आया, तो उतना भी नहीं, बगल में बैठ के बातें करते थे, और कभी कभी अपने बिस्तर पर साथ लिटा के प्यार करते थे, तो इस तरह। इसलिए उन्होंने बाबा को हमेशा हमेशा साधारण देखा ही नहीं। आपने देखा होगा अगर कोई लौकिक में, समझ लो एक भारत का बड़ा राजा कौन है, कोई भी हो,
विक्रमादित्य हुआ है, विक्रमादित्य वे सब,
विक्रमादित्य,
अशोका है,
अभी वो है नहीं, उसका कोई पार्ट बजा रहा है, वो मशहूर कलाकार समझ लो, फेमस एक्टर है, तो आपको उसको ड्रेस देके क्या लगता है ये अशोक है या चंद्रगुप्त है ना? तो अगर जो व्यक्ति उस एक्टर को जानता है वो क्या कहता है,
ये तो फलाना,
फलाने ये व्यक्ति किया, ये चंद्रगुप्त जो पार्ट बजाया इसने बजा है ना। तो उसी प्रकार जो जो अपने आदि रत्न जो है या सीनियर मोस्ट भाई बहन है, वो बाबा को देखते थे, देखने में क्या लगता था, ये ब्रह्मा बाबा साकर बाबा है, लेकिन उसके अंदर किसको देखते थे?
कृष्ण।
वो पाठ बजाने वाला कौन है?
कृष्ण है, ब्रह्मा,
शिव बाबा
है।
वो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा में कोई उन्होंने अंतर नहीं देखा। दादियों का अनुभव आप सुनते हैं तो ये कभी ये नहीं बोला, हम संकल्प नहीं आए ये ब्रह्मा बाबा का महावाक्य है, शिव बाबा का महावाक्य है, क्योंकि वो जो ब्रह्मा का पाठ में ब्रह्मा की बात बता रहा था ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर के करण करावन हार, सबसे पहले शिव बाबा ने ब्रह्मा बन के ब्रह्मा बाबा की रचना की, आदिरत्नों की रचना की, उसने पहले अपना कर्म स्थापना का कर्म करके दिखाया, उसी को ब्रह्मा बाबा ने करते चला। इसलिए लौकिक में कहते हैं डबल रोल, एक शरीरधारी दो पार्ट बजाता है, लेकिन यहां एक ही शरीर में दो आत्माएं एक ही पार्ट बजाती है। पहले शिव बाबा करता है, उसी को फॉलो करके ब्रह्मा बाबा, करने वाला भी वही है, कराने वाला भी वही है, कौन? शिव बाबा। तो शिव बाबा भी ब्रह्मा बन के पाठ बजाता है, विष्णु बन के हमारे सबकी पालना करता है, राजयोग सिखा के अपने पापों का संहार करता है। ऐसे ही हम भी, इसलिए वो त्रिमूर्ति के चित्र में एक वो चित्र एक। कई बार बाबा ये भी बोलता है, मैं ब्रह्मा के रूप में आपको दिखाई पड़ता हूं। ये रूप का दो अर्थ है, ब्रह्मा का रूप क्या होता है? एक रूप होता है रूप, फेस, ब्रह्मा के फेस, किसका फेस है? ये आत्मा है, ठीक है, आत्मा निराकार ज्योति बिंदु है, उसका रूप ज्योति है। अगर वो ये फेस किसका है? मेरा है ना, मैं कौन? आत्मा। मेरे को आप इस फेस से पहचानते हैं, उसी प्रकार शिव बाबा को किस फेस से पहचानते हैं? ब्रह्मा बाबा के फेस से। तो ब्रह्मा जो है शिव का साकार रूप है। शिव बाबा एक्ट किया, अपना पार्ट बजाया ब्रह्मा बाबा के तन में बैठकर, लेकिन वो तन किसका हो गया, वो रूप किसका हो गया? ये सारी एक्टिविटीज आपने कभी अव्यक्त बाप दादा को देखा है? जब ज्ञान सरोवर का उद्घाटन हुआ था, मैं देख देख के इतना खुश हो रहा था, बाबा यहाँ हॉल में आए थे तो बाबा को दिखाने के लिए पैदल लेके गए, किसने देखा वो सीन?
वीडियो
अवेक बाप दादा को पैदल लेके गया। उनकी जो स्टाइल है ना चलने की, चाल जिसको बोलते हैं, अरे मुझे देख के इतना वंडर लगा, जैसे ब्रह्मा बाबा धोती ऐसे पकड़ के चलते है ना, सेम स्टाइल, मुझे को देख के आंखों में आंसू आ गया। देखो बाबा पराये शरीर में आया है, लेकिन स्टाइल वही है चलने के। और कई बार आप उनके फेस देखते हैं ना बाबा का, अब एक बाप दादा का फेस देखते हैं, लगता है ये गुलजार दादी का फेस, ब्रह्मा बाबा का फेस। वो ब्रह्मा बाबा का फेस किसका फेस है? शिव बाबा का फेस। इसलिए शिवलिंग के ऊपर जो मुखवाड़ रखते है ना शंकर का, कहते हैं शंकर का नहीं, वो तो ब्रह्मा बाबा का। तो ऐसे बहुत बातें हैं, अगर हम आध्यात्मिक और भक्ति मार्ग अगर कंपेयर करने जाते हैं तो दिन रात ऐसे भी। इसलिए बाबा के संगमियों का आनंद लेना मत भूलना, कभी बोर नहीं होना बाबा के साथ। ये ज्ञान इतना वंडरफुल और अभी क्या बताए, रसीला। अब जितना जितना साकार मुरलियों का अध्ययन करेंगे उतना आनंद, और आनंद छोड़ दो इतना आप लगन में मगन हो जाएंगे। मैं तो, बाबा ने मुझे ऐसा सेवा दिया है, लोग मुरली पढ़ने के लिए ज्ञान का अध्ययन करने के लिए समय निकालना पड़ता है, लेकिन बाबा ने मुझे वही सेवा दिया, हाँ, बुक्स बनाने की, बुक्स स्टडी करने की, मुरली पढ़ने की, मुरली से पॉइंट निकालने की। इसलिए मैं तो बाबा को इतना ऋणी हूं कि मेरा जीवन धन्य हो गया।
हम भी वैसे आपके अनुभव सुन रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। वैसे जब ज्ञान की बात हो रही है तो कई बार ब्रह्मा बाबा की अव्यक्त हुए तो दो शब्द बहुत आते हैं, एक संपन्न और संपूर्ण, बाबा संपन्न हो गए, संपूर्ण बन गए। तो ऐसे हम सब मतलब ये संपन्न और संपूर्ण को थोड़ा सा विस्तार करके आप थोड़ा सा
देखिए। ये बात जब मैंने अव्यक्त बाप दादा बोला था ना संपन्न और संपूर्ण, तब इस जब सुना तो संकल्प आए इसके ऊपर एक किताब क्यों नहीं बनाए। तो सारे अव्यक्त मुरलियों से आपने शायद आपने एक किताब देखी होगी, ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण, एक किताब है लिटरेचर डिपार्टमेंट में, वो किताब तैयार की। तो संपूर्ण बनना सबका लक्ष्य है, और बनना भी है और बनेंगे भी है। हर आत्मा को संगम युग में आने के बाद संपूर्ण बनना ही है। संपूर्ण अर्थात अव्यक्त कर्मातीत अवस्था। तो संपूर्ण कैसे बनेंगे? संपूर्ण बनने के लिए पहले संपन्न बनना पड़ेगा। संपन्न का अर्थ क्या है, कौन बताएंगे? कोई बताएंगे संपन्न? ये संपन्न है भाई, इसका अर्थ भरपूर, किसी चीज की कमी नहीं है, भरपूर, उसको संपन्न, जैसा घड़ा भरा रहता है वो संपन्न है। ऐसा ही अगर हमारे ये एक अवस्था है, मन की अवस्था है, अगर हम ये समझते हैं बाबा मिला, बाबा मिला,
सब कुछ मिला,
ये संतुष्टता चाहिए। इसलिए संतुष्टता सबसे अनमोल गुण है। अगर संतुष्टता नहीं है तो आप कितने भी हो, अपना छोड़ेगा दूसरों को देखता रहेगा, उसके पास हो है, इसके पास है, वो ऐसा करता है ऐसे करता है, मुझे भी चाहे, लेकिन मुझ में जो है, बाबा ने मुझे जितना दिया है उसी से अगर मैं संतुष्ट हूं, मैं संपन्न हूं। इसलिए संपन्न होना बहुत जरूरी है संपूर्ण बनने के लिए, और संपन्न बनने के लिए संतुष्टता का गुण बहुत आवश्यक है। संगम में कुछ भी मिले खुश रहो, क्योंकि बाबा ने बोला है संगम युग, जो संगम युग में आए हैं उनके लिए हर सेकंड कल्याणकारी है, हर क्षण सुखदायी है। तो संपन्न होना है ज्ञान में, धारणा में, योग में, सेवा में, हमें जो भी सेवा मिले उसमें संतुष्ट है, ये संपन्नता। जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे तब तक संपन्न नहीं बनेंगे, जब तक संपन्न नहीं बनेंगे तब तक वैरागी नहीं बनेंगे, जब तक वैरागी नहीं बनेंगे तब तक फरिश्ता अर्थात संपूर्ण नहीं बनेंगे। इसलिए संगम में सबसे बड़ा बुद्धिमान वही है जो संतुष्ट रहता है। लेकिन पुरुषार्थ में आगे बढ़ते रहे।
थैंक यू सर। जैसे संपन्न और संपन्नता की बात आई, वैसे फिर एक और आता है बाबा कर्मयोग की बात, कर्म और, क्योंकि अगर आप आजकल ये होता है कि अगर आप संपन्न हो मतलब खुद को संतुष्ट कर लेते हो ना तो मोटिवेशन नहीं मिलता है कुछ करने का, यू नो। और दूसरी तरफ ऐसा भी देखने में आता है कि व्यक्ति है ना बहुत काम में बिजी है, ठीक है, लेकिन जब बाबा की एक विशेषता आता है ना तो कर्मातीत, यू नो, भाई साहब भी जगदीश भाई कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि बाबा कर्म में भी थे लेकिन वो उपराम भी थे। तो ये जो कर्मातीत वाली अवस्था है ना वैसा, ये हम प्रैक्टिकली कैसे इसका विशेष कैसे पुरुषार्थ करें और ये कैसे अनुभूति होती है?
इसके ऊपर इससे पहले एक घटना सुनाना चाहता हूं मैं। कर्मातीत शब्द याद आता ही, मैं जब अव्यक्त मूल्यों के पांच निकालते थे तो उस समय एक कर्मातीत अवस्था के एक पॉइंट्स मिली कुछ, उसको इकट्ठा किया। उस समय बड़ी दादी है ना कुमार का दादी, वो बार बार अपने मधु निवासियों के क्लास में बोला करते थे कर्मातीत बनना है, कर्मातीत बनना है। तो मुझे संकल्प आया, मेरे पास जो पॉइंट है कर्मातीत उसकी एक छोटी सी किताब क्यों नहीं बनाए। तो मैंने उसमें वो सारे कर्मातीत स्टडी करते 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 बहुत कुछ आए, कर्मातीत बनना है, लेकिन कर्मातीत बनने से पहले बहुत समय का कर्मयोगी बनने का अभ्यास चाहिए। तुरंत कोई कर्मातीत नहीं बनता, कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए भी उसके प्रभाव से दूर रहना, पहले कर्म करते हुए भी उसकी स्मृति से भी अतीत रहना। आप कर्म कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं पड़ेगा मैंने किया। जैसे समझो आप सोए हुए हैं, कुछ खुजली हो करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, सुबह आपको पता रहता है कि मैंने खुजली किया नहीं। इतना नेचुरल ये जो सुषुप्त अवस्था बोलते हैं ना, उसमें भी आप इतना ये हो, वो कर्म का अभ्यास होना चाहिए। तो मैंने वो किताब छोटी सी बुक है, आप भी आपने डिपार्टमेंट में अभी मिलती है, छोटी सी किताब है, कर्मातीत किताब बना के मैनुअली उसको प्रिंट करके पिन करके दादी के जो खाना बनाता था उस भाई को मैंने दिया, देखो इसको दादी को देना। मैंने कहा आप भी चलो साथ में, नहीं आप दे दो, ये छोटी सी किताब है, बड़ों के सामने इतनी छोटी किताब लेके जाना अच्छा नहीं है। जब दादी उसको देखा ना, वो कहते दादी उसको बा मेरे खटिया पर रख देना। तो पूरी रात सुबह तक पूरा वो किताब पूरा पढ़ के ही सुबह क्लास में सुना दिया। मुझे एक छोटी सी किताब मिली कर्मातीत अवस्था, बहुत अच्छी किताब है वो। तुरंत उन्होंने आतम भाई को फोन करके किताब छपवाई, उसमें आते मतलब दादी जी कर्मातीत के बारे में आप देख लीजिए, उनको इतने साल होते हुए भी ज्ञान का अध्ययन करने का कितनी रुचि है। वो किताब पूरा पढ़ के उन्होंने रेस्ट किया, सोने निद्रा किया बता रहे। तो इसलिए कर्मातीत बनना है तो सबसे पहले कर्मयोगी बनना है। कर्मयोगी कैसा बना, जिसको बाबा ब्रह्मा बाबा हमारे सामने, तो ब्रह्मा बाबा सामने है, साकार में है, उदाहरण के तौर पर हम ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा के तन में अनुभव करते हैं ना। तो ब्रह्मा बाबा कैसे अनुभव करते थे शिव बाबा को, आपने कभी सोचा? हम शिव बाबा को साकार में देखना है तो ब्रह्मा बाबा के तन में देखते हैं, गुलजार दादी के तन में देखते हैं, तो बाबा शिव बाबा उसमें है, अनुभव करते हैं। तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के साथ कैसे अपना ये संबंध जोड़ते थे, वो लोग क्यों इतना जल्दी अव्यक्त अवस्था प्राप्त की? वो अपने शरीर एक शिव बाबा को निराकार रूप में अपने साथी बनाया, खुद साकार होते भी शिव बाबा को साथ में रखा निराकार रूप में, और साथ साथ ये भी अनुभव किया उन्होंने अपने शरीर में शिव बाबा बैठा। जैसे देखो बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं, बाबा मेरे साथ बैठा है, मैं ये अनुभव करता हूं शिव को लोटी चढ़ा रहा हूं, है ना। ये कर्मयोग है, कर्मयोग माना शिव बाबा को, जो भी हम कर्म करते हैं शिव बाबा को साथ में रखना है। या अगर निराकार को रखना है तो आप खुद अपने को निराकार ज्योतिर्बिंदु ज्योति स्वरूप समझ के उसको अपने साथ रखो, क्योंकि हम साकार है उसको निराकार को रख नहीं सकते। अगर हम साकार निराकार नहीं बन सकते, साकार है तो शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा के साकार तन में साथ रखो। वेरी सिंपल, मेरा तो ऐसे इतने अनुभव मैंने किया, इतने अनुभव किया ऐसे बातों का। अगर कोई आप माता है या बहन है, कोई भाई, कोई चीज है, एक चीज है बहुत भारी आप उठा नहीं सकते तो क्या करेंगे, कोई है भी नहीं मदद करने के लिए, उस समय आप क्या करो, करके देखना बाबा उठाओ। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा को अनुभव करके उठाओगे, आप ही उठाओ, हल्का हो जाएगा। कई बार मेरे कई चीजें है, ढूंढने जाता हूं कमरे में, मिलता नहीं, बाबा वो कहां है दिखाओ ना, वो फट से सामने दिखाई पड़ता है। ऐसा हजारों अनुभव हुआ है, आपको भी हुआ होगा। ऐसा कर्म योग का अभ्यास करते चलो, तब जाके आप कर्मातीत अवस्था के, मतलब कर्म, देखो जब हम बाबा को साकार साथ रखते हैं ना, तो आप जो करते हैं ध्यान उस तरफ नहीं रहेगा, कहां रहेगा, बाबा के साथ रहेगा। तो आप जो कर्म करते हो भी उसका भान आपको नहीं है, तो कर्म क्या हो गया, जब देह का भान रहेगा, देह की स्मृति रहेगी, वो कर्म विकर्म होगा। अगर आपको देह की स्मृति नहीं, बाबा का साथ का अनुभव है, तो श्रेष्ठ कर्म होगा। ये कर्म का भी एक गुह्य गति है, इसलिए बाबा कई बार बोलता है कभी भी ये मत समझो मैं फलाना आत्मा के लिए फलाना व्यक्ति के लिए कर्म कर रहा हूं। क्या करो, मैं बाबा के लिए, बाबा को बीच में रखो तो आप सुकर्म हो जाएगा। अगर आप खुद अकेले करते हैं तो उसमें आपकी स्मृति आएगी, मैंने किया तो मैंने किया, मैं ना 25% कट, सिर्फ संकल्प आया, फिर किसी को सुनाया 50%, तो अभिमान आ गया, हो गया 90%। तो इसलिए कितना सूक्ष्म है, इसलिए बाबा बोलते हैं हमेशा अगर कुछ भी करते हो, लिखते हो तो बाबा ये मैं लिखना चाहता हूं, लिखो बाबा मुझे पेपर नहीं मिल रहा, पेपर ला के दो ना, ले आओ खुद ही, लेकिन अनुभव करो बाबा लेके दे रहा। इस प्रैक्टिस आप करते जाएंगे तो आपको जो आनंद आएगा ना, तो आप खुद ही अनुभव करेंगे, ये कर्मयोग। ऐसे मैं सिर्फ सिंपल बताया, ऐसे कई बातें हैं, आप करते रहो, हर कर्म में बाबा को साथ रखो। जैसे हम दोस्तों को, घर में बच्चों को, या पति पत्नी को, पत्नी पत्नी को रखते हैं ना, कोई भी बात पूछते हैं भाई ये करूं वो करो, तो इसी को पूछो उनसे, लेकिन बुद्धि में क्या रखो, बाबा से मैं पूछ रहा हूं। देखो,
थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। बहुत सुंदर सुंदर बातें हमें सुनने को मिली, यू नो, कैसे हम अपने भाव सहित बाबा को याद कर सकते हैं। और सच में यू नो ये सारी चीज पुरुषार्थ कैसा है, ये बाहर दिखाने वाली चीज नहीं है, ये हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है। मैं भाई साहब की एक जस्ट दो मिनट और जगदीश भाई जी की सुन रहा था। भाई साहब जब वो मधुबन में आए बाबा से मिलने, पहली बार उनको मतलब पहले तो जैसे वो ट्रांस में चले गए, और फिर उनको रात को नींद नहीं आ रही है, यू नो जैसे आपने बताया, तो फिर जब वो सुबह उठे तो बाबा ने बोला सुबह मिलेंगे, तो जब वो सुबह उठे तो उनको ना लोग जा रहे हैं, मुंह धुलाई करके जा रहे थे, तो भाई साहब को संकल्प आया कि ये सबसे ऊंच थे ऊंच है ना भगवान, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ और मैं ऐसे मुंह धुलाई करके जाऊंगा। भाई साहब उस समय पे बताते हैं कि मैं 2 बजे स्नान करके ब्रह्मा बाबा के सामने गए, क्योंकि उनकी मनसा, उनके भाव जैसे बताया ना, वो केवल ब्रह्मा से मिलने नहीं जा रहे थे, शिव से मिलने जा रहे हैं, भगवान से मिलने जा रहे हैं। तो सच में यू नो जो अब हमारे भाव हम अंदर से वैसा पुरुषार्थ करते ना, तो बाबा एकदम हमारे क्लोज हो जाता है। बाबा हम, बाबा की जो अनुभव है, जो उसकी मदद है, वो डायरेक्ट हमें यू नो महसूस होने लगती है, उसके अनुभव होने लगते हैं। तो वैसे बहुत बहुत धन्यवाद, इतने जैसे बोलते ना प्रीसियस एक्सपीरियंसेस आपने हमारे साथ शेयर किए, और आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा ये सारी करके। तो पुनः हम एक बार फिर भाई साहब का एक हाथ हिला के थैंक यू,
थैंक्स। मुझे आपको बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, क्योंकि मेरे सारे पुरानी यादें याद दिलाई, मुझे भी अच्छा लगा। थैंक यू, शांति।